एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि ऐ दोस्त, जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए कोशिश कर ले और जितना आखिरत में रहना है उतना आखिरत के लिए कोशिश कर ले। हमारी दुनिया की जिंदगी तो है 150 साल और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल लिखी है कि अगर जमीन और आसमान के दरमियान राई के दाने भर दिए जाएं और एक परिंदा 1000 साल के बाद आए और एक दाना खाए, फिर 1000 साल के बाद आए दूसरा दाना खाए, फिर 1000 साल के बाद आकर तीसरा दाना खाए, एक वक्त आएगा कि जमीन और आसमान के दरमियान राई के ये सब दाने खत्म हो जाएंगे, आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। जब हमने इतना वहां जाकर रहना है तो हम सोचें कि हमारे दिन की तरतीब क्या है। हम तो अपने 24 घंटे का स्केड्यूल ऐसे बनाते हैं कि जैसे दुनिया ही में रहना है और आखिरत की तैयारी के लिए तो वक्त ही नहीं निकालते। इसी को गफलत कहते हैं और इसी को धोखा कहते हैं। इसलिए दुनिया का नाम है दारुल गुरूर, धोखे का घर। और ये धोखा सिर्फ जाहिलों को और अनपढ़ों को नहीं लगता, ये पढ़े लिखे अकलमंदों को भी लगता है। वो दुनिया की जिंदगी में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि नमाजों की फुर्सत ही नहीं होती। गौर करें तो आज का हर इंसान अपनी जन्नत सजाने में लगा हुआ है। मेरा घर ऐसे हो, मेरा बिजनेस ऐसे हो, बीवी ऐसी हो, बच्चे ऐसे हो, गाड़ी ऐसी हो। हर बंदा अपने जहन के अंदर एक जन्नत सजाकर उसको बनाने में लगा होता है और उसको ये नहीं पता कि अल्लाह ने तो जन्नत आखिरत में सजाई है, दुनिया में तो हम तैयारी के लिए थे। इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि आज हर बंदे को ये फिक्र होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। जिस औरत को देख लो, जिस मर्द को देख लो, उसके जहन में यही फिक्र कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कभी हमने ये भी सोचा कि बच्चों के मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। तो हमारी सोच तो है ही दुनिया की। इसीलिए जब मरने वाला दुनिया से जाता है तो उस पर कोई नहीं रो रहा होता। कहते हैं कि एक नौजवान नेक आदमी था, वफात के करीब घर के सारे लोग रोने लगे। उसने वालिद से कहा कि अब्बू क्यों रोते हैं? उसने कहा, मेरा जवान बेटा फौत हो रहा है, अब मेरा सहारा कौन बनेगा? मां से पूछा, उसने कहा, बेटा मैंने तुम्हें पाला बड़ा किया, अब जब मेरा वक्त आया कि तुम मेरी खिदमत करते तुम जा रहे हो। बीवी से पूछा, उसने कहा कि आप मेरे खामिद हैं, आप फौत हो गए तो मेरी जिंदगी में तो अंधेरा हो जाएगा। बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे सर का साया है और हमारा साया खत्म हो गया। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम सब के सब अपने लिए रो रहे हो, मेरे लिए तो तुम में से कोई नहीं रो रहा। तो रोने वाले भी अपने लिए रोते हैं, मरने वाले के लिए कौन रोता है? इल्ला माशाल्लाह। इसलिए आज वक्त है तैयारी करने का। जैसे स्कूल में इम्तिहान होता है, एक ए पेपर होता है, एक बी पेपर होता है, दोनों में पास हो जाएं तो बस अगली क्लास में चले जाते हैं। यही हमारा हाल कि दुनिया की जिंदगी में हमें तैयारी का हुक्म दिया गया, कब्र में जाएंगे तो ए पेपर होगा और उसमें तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तेरा रब कौन है, तेरे नबी अलैहिस्सलाम कौन है, तेरा दीन कौन सा है। और जब इंसान क्यामत के दिन उठेगा तो फिर उसका बी पेपर लिया जाएगा और बी पेपर के अंदर चार क्वेश्चन होंगे, तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, किधर से कमाया, कहां पे खर्च किया और तुमने अपने इल्म पे कितना अमल किया। जो ए पेपर बी पेपर दोनों में कामयाब, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर जन्नत का घर अता फरमा देंगे। मगर इसका ये मकसद नहीं कि जी हमें तो इन सवालों के जवाबात का पता है तो हम मौत के वक्त जवाब दे लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे जिंदगी गुजरी होगी वैसा इंसान कब्र में जवाब दे सकेगा। जिसने दुनिया में नमाजें न पढ़ी, जो बेपर्दा फिरती रही, जिसने गीबत की, लोगों के दिल दुखाए, अल्लाह की बंदियों के लिए जो वबाले जान बनकर फिरती रही, जब ये कब्र में जाएगी तो ये नहीं कह सकेगी कि मेरा दीन इस्लाम है, इसका तो तर्ज जिंदगी ही और था, तो इस्लाम का नाम कैसे ले सकेगी। जो बेपर्दा फिरती है वो कैसे कह सकेगी कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानती हूं, उनकी तालीमात को अपनाया नहीं, उनकी सुन्नतों की तो ध्यान नहीं दिया, तो कैसे जवाब दे सकेंगे। तो इसलिए कितने लोग होते हैं जो मौत के वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते। चुनाचे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब मुल्तान के हैं, उन्होंने जिंदगी के 35 साल इमरजेंसी वार्ड के अंदर ड्यूटी की। उन्होंने मौत के ऊपर एक किताब लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में तो लोग आते हैं जो आखिरी आखिरी लम्हों पर होते हैं और बहुत सारे फौत भी हो जाते हैं, तो जब भी कोई ऐसा बंदा मेरे सामने आता मैं उसे कलमा पढ़ने की तलकीन करता। वो कहते हैं कि मेरा तजर्बा ये है कि 100 में से 95 बंदों को कलमा पढ़ना नसीब नहीं होता। तो उनसे पूछा गया कि कैसे, वो कहने लगे कि पहले तो मुझे समझ नहीं लगती थी कि ये क्यों नहीं ऊंचा कलमा पढ़ते जबकि मैं इनको पढ़ा भी रहा हूं। फिर एक बंदे को मैंने कहा कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कलमा पढ़ो, और अगर तुम ना पढ़ सकोगे तो मैं पूछूंगा कि तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ नहीं पा रहे। उसने कहा बहुत अच्छा, मैं जवाब दूंगा। जब उसकी आखिरी कैफियत आई तो मैंने उससे पूछा तो उसने इशारे से बताया कि मेरी जुबान पे फालिज पड़ गया है, अब मैं बोलना भी चाहता हूं मेरी जुबान बोलती नहीं। आज अल्लाह ने जुबान का कंट्रोल हमें दिया, हम चाहें तो एक दिन में हजारों दफा कलमा पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस औरत ने जीते जागते कलमा पढ़ाए ही नहीं, दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, जबान पे कलमे का विर्द जारी ही नहीं होता, दुनिया की बातें, दुनिया की बातें, दुनिया के फैशन, तो मौत के वक्त अचानक कलमा कैसे जारी हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ویزا لگ چکا ہو اور وہ بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج کے اندر پہنچ گیا ہو اور اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے، کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری اناؤنس ہوتی ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں اور یہ اٹھ کے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل زندگی کا یہی معاملہ، نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب کا موت کا ویزا لگ چکا، ہم لاؤنج میں ہیں، کب ہماری فلائٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ یعنی ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ، اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا۔ تو جب اوسط نکالیں گے تو گراس ایوریج اس امت کی 60 سے 70 سال بنے گی۔ اب جن لوگوں کی زندگی ہے ہی 60 سے 70 سال، تو جو عورتیں 40 سے اوپر پہنچ گئیں وہ اپنی زندگی کے ظہر اثر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر اثر کے بعد پھر مغرب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ کئی کام اکٹھے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی کے دن کریں گے، اور چھٹی کے دن جب صبح ہوتی ہے تو دل میں بڑا مان ہوتا ہے، لمبا دن پڑا ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن کام کرتے کرتے جب ظہر گزر جاتی ہے تو پھر بندے کو پینک کنڈیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو تسلی میں تھا کہ لمبا دن پڑا ہے، اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی دن تو نکل گیا، جلدی سے کام سمیٹو۔ تو جو 40-50 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں، اب وہ ظہر اثر کے وقت میں پہنچ گئیں، مغرب ہونے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے، وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے، تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا، میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ایسی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا، تو میں نے ٹیکہ منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا۔ اللہ کی شان، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے ہیں۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ سپیشلسٹ ہیں कि मुल्क के सदर वजीर आजम के वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, VVIPs के हार्ट स्पेशलिस्ट। एक नौजवान आया और आके उसने उनसे चेकअप करवाया तो डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप करने के बाद उनको कहा कि योर हार्ट इज फंक्शनिंग एज गुड एज दैट ऑफ ए यंग मैन, कि तुम्हारा दिल तो एक नौजवान बंदे के दिल की तरह ठीक ठीक काम कर रहा है। उस नौजवान ने उनसे अपनी फाइल पकड़ी और पीछे मुड़कर जो कदम उठाया वहीं उसको हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर की आंखों के सामने उसकी जान निकल गई। तो अल्लाह ताला चाहता है तो डॉक्टर के कदमों में जान दे देता, मौत दे देता है, और अल्लाह ताला चाहता है तो मुर्दों की फहरिस्त से बंदे का नाम निकलवा देता है। और कई मर्तबा इंसान मौत से भाग के जा रहा होता है और हकीकत में मौत के करीब हो रहा होता है। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, एक शख्स दाखिल हुआ और उसने वहां बैठे हुए किसी आदमी को बड़े गौर से देखा, तो जिस बंदे को गौर से देखा उस पे बहुत खौफ तारी हुआ। वो उठ के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत मुझ पे बहुत खौफ है इस शख्स का जिसने मुझे गौर से देखा, आप प्लीज हवा को हुक्म दें मुझे दूर फलां जजीरे के अंदर पहुंचा दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया। इतने में आपने उस बंदे को बुलाया जिसने घूर के देखा था, पूछा कि भाई कौन हो? उसने जवाब दिया, जी मलकुल मौत। तुम उसे घूर के क्यों देख रहे थे? तो कहने लगे कि मैं इसलिए उसको गौर से देख रहा था कि इसकी रूह तो मैंने फलां जजीरे के अंदर निकालनी है और ये आपके दरबार में यहां बैठा हुआ है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि उसने मुझसे खुद रिक्वेस्ट की कि मुझे फलां जजीरे में पहुंचा दें। मलकुल मौत ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं भी उसी जजीरे में जा रहा हूं उसकी रूह को कब्ज करने के लिए। बनी इसराइल के 5-6 आदमी सफर पे, 7 आदमी सफर पे जा रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकने लग गई। इतनी खौफनाक बिजली चमक रही थी कि उनको ये ख्याल हुआ कि आज ये हम में से किसी ना किसी को लेके जाएगी। वो एक गार के अंदर छुप गए, मगर बारिश भी ना थमती थी और बिजली चमकना भी ना रुकती थी। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई ऐसे करो, एक एक करके बाहर निकलो, जिसको बिजली ने जलाना होगा वो जला देगी तो बाकी तो सुकून का सफर कर सकेंगे। चुनाचे एक निकला, बिजली चमकी मगर उसको जलाया नहीं, वो वापस आ गया। फिर दूसरा निकला, खैरियत से वापस आ गया। तीसरा निकला, चौथा निकला, 6 निकले और 6 के 6 को बिजली ने नहीं जलाया, एक बाकी रह गया। सब कहने लगे कि तू मनहूस है, बदबخت है, तेरी वजह से ये सारी मुसीबत आई हुई है, निकल बाहर। उसने कहा मैं नहीं निकलता। सब जोर लगा रहे हैं, कह रहे हैं, लड़ रहे हैं कि निकल बाहर, वो कहते नहीं निकलता। वो ऐसा वहां पर जमा कि उसने कहा जो मर्जी कर लो, मैं गार से बाहर नहीं निकलूंगा। तो कुछ देर के बाद इनके जहन में ख्याल आया कि अगर ये बाहर नहीं निकलता तो हम तो सब एक एक करके निकल चुके, चलो हम निकलते हैं और हम सफर पे चलते हैं, ये अंदर ही रहे। जैसे ही वो 6 के 6 बाहर निकले, बिजली चमकी और 6 के 6 को मौत आ गई। अब ये सब धकेल रहे थे सातवें को और इनको ये नहीं पता था कि मौत का वक्त तो हमारा करीब आ चुका। कहते हैं कि 2 चोर किसी घर में आए चोरी करने की नीयत से, तो एक बुढ़िया और बूढ़ा कमरे में सोए हुए थे। इन्होंने उन दोनों को रस्सियों से बांध दिया चारपाइयों के साथ और दोनों की चारपाइयां उठाकर सेहन में रख दी, मुंह पे टेप लगा दी ताकि हम कमरे में तसल्ली के साथ सामान को खोलेंगे और कीमती सामान को ले जाएंगे। जैसे मियां बीवी की चारपाइयां इन्होंने सेहन में रखी, ये कमरे के अंदर गए कि हम चोरी करते हैं। अचानक कमरे की छत गिरी और ये दोनों चोर दब कर मर गए। मोहल्ले वाले आ गए, शोर हुआ था। अब वो हैरान कि मियां बीवी तो रस्सियों से बंधे हुए हैं। उनसे पूछा, भाई तुम्हें बाहर किसने निकाला? उनका, हमें तो पता नहीं, हम तो अंदर सोए हुए थे। उनको खोला गया, जब मलबा हटाया गया तो उसके अंदर दो चोरों की लाशें दबी हुई थीं। पता चला कि चोर इनको निकाल रहे थे कि हम चोरी करेंगे और उनको ये नहीं पता था कि हम अपनी मौत का खुद इंतजाम अपने हाथों से कर रहे हैं। तो इंसान कई मर्तबा मौत से दूर भागता है और हकीकत में वह मौत के करीब से करीब तर हो रहा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें। मोहलत हर एक को मिली है, किसी को कम किसी को ज्यादा। इस मोहलत से जो फायदा उठाएं वो खुशनसीब इंसान है। इस दुनिया में आपको अल्लाह का मुनकर तो मिल जाएगा, रिसालत का मुनकर भी मिल जाएगा, दीन का मुनकर भी मिल जाएगा। इस दुनिया में आपको मौत का मुनकर कोई नहीं मिल सकता। दहरिये से दहरिया भी होगा तो ये मानेगा कि एक दिन मुझे मौत आनी है। जब मौत आनी ही है तो क्यों ना इंसान उसके लिए तैयारी कर ले। और मौत की तैयारी ये नहीं कि इंसान जॉगिंग करे और वेट लिफ्टिंग करे और एक्सरसाइज करे, नहीं। मौत की तैयारी यह है कि इंसान अपने पिछले गुनाहों से तौबा कर ले, आइंदा नेकोकारी की जिंदगी गुजारने का इरादा कर ले और जो लोगों के हुकूक इस पर हैं उनसे माफी मांग ले। हमने देखा कि बस औकात जो बंदा बीमार होता है उसके साथ ऊपर वाले जुल्म करते हैं। जुल्म का क्या मतलब? कि उसको हकीकत नहीं बताते कि बीमारी कितनी है, तसल्ली देते रहते हैं और वो झूठी तसल्ली होती है। अबू ठीक हो जाएंगे, अम्मी ठीक हो जाएंगी और वो समझते हैं कि हम बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। वो जी बताएंगे तो अबू को शौक लगेगा। भाई शौक तो उनको लगेगा जब अचानक मौत आ जाएगी। ये बेहतर नहीं कि उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जी बीमारी खतरनाक है, जिंदगी का पता नहीं, अबू कलमा पढ़ लें, अबू तैयारी कर लें। ऊपर वाले जुल्म करते हैं बंदे के साथ। चुनाचे एक मर्तबा मैं अपना वाकया आपको सुनाता हूं। एक साहब थे जो सेक्रेटरी लेवल के थे, बहुत लिखे पढ़े और बड़ी उनकी तनख्वाह और गाड़ियां और टैलेंटेड इंसान। उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो बीमार हुए तो हॉस्पिटल में थे। घर आए तो हम उनकी तबापुरसी के लिए हाजिर हुए। तो जब उसके बड़े बेटे ने मुझे देखा तो कहने लगा, हजरत साहब मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दें। डॉक्टर ने तो हमें जवाब दे दिया है और कहा है कि बस हफ्ते 10 दिन की बात है, इनके अंदर कैंसर फैल चुका। लेकिन हमने अब्बू को नहीं बताया, आप भी प्लीज अब्बू को ना बताना। मैं खामोश रहा। खैर अंदर गए, मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें कहा, जी कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो उन्होंने सबको जाने का हुक्म दे दिया कि भाई कमरे से जाओ। मैं हजरत जी से कोई बात करना चाहता हूं। जब वो अकेले हो गए तो मैंने उनसे बात की कि देखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं जानता कि कब मौत आएगी। क्या पता मेरी मौत पहले आए, क्या पता आपकी मौत पहले आए। हमने आंखों से देखा है बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश को दफन कर रहा होता है, और कई मर्तबा जवान बाप अपने नौजाइदा बच्चे की लाश को दफन कर रहा होता है। तो यहां क्या भरोसा जिंदगी का। कहने लगे, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि बात यह है कि आपकी जो रिपोर्टें हैं उनसे पता चलता है कि आपके अंदर कैंसर बहुत फैल चुका, और डॉक्टरों ने हफ्ता 10 दिन का वक्त दिया है, तो बेहतर यह है कि आप तैयारी कर लें। यह बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो मुझे कहने लगा कि हजरत साहब, आपने सच कहा, ये सारे लोग मुझे झूठी तसलियां दे रहे थे, मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। मेरा दिल कहता था कि मेरी बीमारी खतरनाक है, और ये ऊपर वाले कहते थे, रिपोर्ट भी नहीं दिखाते थे, कहते थे बस ठीक हो जाएगा, आप फौरन ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह आपका भला करे, आपने मुझे बता दिया। मैंने तो अब अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को देख लिया, कितना बंदे ने रहना होता है, तो चलो मुझे अंदाजा तो हो गया। अब ये कहकर उन्होंने दरवाजा खुलवाया। जब बेटा आया और उसको पता चला कि हजरत साहब ने तो बता दिया मेरे अब्बू को, तो वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उनको कहा कि बच्चे गुस्सा ना करो, मैंने तुम्हारे साथ भला किया है। अल्लाह के उस बंदे ने सारे घर वालों को बुलाया और उनको कहा कि देखो भाई, मेरी बीमारी की यह हालत है कि मेरे पास सिर्फ 6-7 दिन हैं। अब ऐसे करो कि जो मेरी जमीनें थीं, जायदादें थीं, मकान थे, और वो मेरे नाम थे, सारे निकालो, मैं अपनी विरासत को बच्चे और बच्चियों में शरीयत के मुताबिक तकसीम करता हूं ताकि मेरे बाद झगड़े ना हों। लो जी, 2 दिन में उन्होंने सब जायदादों का बच्चों के नाम इंतकाल करवा दिया ताकि बच्चों के झगड़े ना हों आपस में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जी चाहता है कि मेरे बच्चों के आपस में रिश्ते हों, तो कुछ रिश्ते थे जो उन्होंने प्रपोज किए और उनकी वजह से उन्होंने आपस में हां भी कर ली। फिर तीसरा काम उन्होंने ये किया कि कुछ रिश्तेदारों की आपस में नाराजगियां थीं, उनको बुलाया और कहा कि देखो भाई, मैं मेहमान हूं, मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं तुम्हें आपस में एक दूसरे से सुलो करता हुआ देखूं। चुनाचे 15-15, 20-20 साल से जो एक दूसरे से रिश्तेदार नहीं बोलते थे, घर आना जाना नहीं था, उन्होंने उन सब में सुलो करवा दी। पूरी बिरादरी इतनी खुश थी इन तमाम बातों पे कि जी, इस बंदे ने इतना अच्छा काम कर दिया, ये हमारी बिरादरी का बड़ा था, सब में जोड़ पैदा कर दिया। फिर अल्लाह की शान, 1 हफ्ते के बाद उसको मौत आ गई। अब उसका बेटा जब कभी मिलता है कहता है, हजरत, जो एहसान आपने हम पे किया, हम उसका बदला नहीं चुका सकते। तो क्या जरूरत है बीमार आदमी से छुपाने की, जबकि उसकी बीमारी इतनी खतरनाक स्टेज तक पहुंच चुकी हो। हम मुसलमान हैं, यकीन है कि हमने जाना है। तो उस बंदे को गफलत में मौत आई और वो कलमा भी ना पढ़ सका, तो फिर उसको दुख होगा ना, बताने से तो दुख नहीं होता। तो इसलिए शरीयत ने कहा कि जब किसी को मौत आने लगे तो उसको कलमे की तलकीन किया करो। हमने ये देखा है कि इधर बंदे के आखिरी लम्हा होता है और उधर बीवी जो है आगे बढ़ती है और बेटी को करती है, आपने पहचाना इसे, ये कौन है, ये देखो, ये तस्नीम आई है, ये देखो ये परवीन आई है, हालांकि वो लम्हा उस बंदे के लिए अल्लाह के जिक्र का वक्त होता है, यकसुई का वक्त होता है। तो ये मसला समझ लें कि जब किसी मरीज या मरीजा को देखें कि अब आखिरी आखिरी लम्हे हैं, मत तारुफ करें और करवाएं। सारी जिंदगी उसको तारुफ होता रहा, अब तो रब से तारुफ होने का वक्त है। अब क्यों उसको गाफिल करते हैं, क्यों उसकी तवज्जो को हटाते हैं? कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, 3 साल की बेटी थी, हफ्सा उसका नाम था। एक दिन उनके ऊपर हार्ट अटैक हुआ और वो इसी कंडीशन में आंखें बंद करके अल्लाह से लौ लगा के पड़े हुए थे। वो हफ्सा आई और दस्तूर के मुताबिक चारपाई पर चढ़ी, उनके सीने के ऊपर लेट गई और उनकी आंखें खोलने लगी, बातें करने लगी। वो खामोश रहे तो हफ्सा कहने लगी, अब्बू आप मुझसे बात नहीं करते, लो मैं भी आपसे बात नहीं करती, मैंने आपसे काटी कर दी। ये कह के वो बच्ची दूसरे कमरे में चली गई और वहां जाके उसने रोना शुरू कर दिया। मां ने देखा बेटी रो रही है तो वो आई, बेटी क्यों रो रही हो? उसने कहा, अब्बू मुझसे नहीं बोलते, मैं अब्बू से नहीं बोलती। तो मां अपनी बेटी को उठा के लाई और उनके पास आकर कहने लगी, देखे ना आप हफ्सा से नहीं बोल रहे, ये आपसे नाराज हो गई है, आप हफ्सा को मना लें। तो जब उसने ये बात कही ना कि आप हफ्सा को मना लें, तो उन बुजुर्गों ने आंख खोली, फरमाने लगे, कौन सी हफ्सा और कैसी हफ्सा, हमने तो अपने यार को मना लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनकी रूह परवाज कर गई। तो आखिरी वक्त में तो ये हफ्साओं को पीछे रखें, उसको कलमा याद दिलाएं, उसका आखिरी लम्हा होता है। जिंदगी में थोड़ी मोहब्बतें उसने दिखाई और मोहब्बतें की, आखिरी वक्त में तो बंदे पे जुल्म हो रहा होता है कि उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ से हटा के दुनिया की तरफ लगा रहे होते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि जब किसी को देखें कि अब आखिरी लम्हा है, तो बस कलमा पढ़ें उसके सामने, जरा मुनासिब आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, ताकि उसको कलमा याद आ जाए और अल्लाह उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी ज़हन में रखें कि एक गलती और भी होती है कि जब किसी का आखिरी वक्त करीब आता है ना, अल्लाह इन डॉक्टरों को हिदायत दे, ये उसको नशे का टीका लगा देते हैं और अपने जहन में सोचते हैं कि इसको तकलीफ नहीं होगी। ओ अल्लाह के बंदे, तुमने नशे का टीका लगा दिया, ये कलमा कैसे पढ़ सकेगा? सारी जिंदगी जिसकी तमन्ना रही कि मैं आखिरी वक्त में कलमा पढ़ के जाऊं, तुम उसको बेहोश कर दोगे तो इस नेमत से महरूम कर दोगे। इसलिए जब आप देखें कि अब आखिरी आखिरी वक्त है, तो डॉक्टरों को मना कर दें, हॉस्पिटल में हो घर में हो, डॉक्टर को सख्ती से कहें कि डॉक्टर साहब इस वक्त आपने नशे का टीका नहीं लगाना, ताकि होश के साथ ये कलमा पढ़ के ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। उस वक्त की जो तकलीफ होती है वो तो गुनाहों की माफी हो जाती है। तो ये भी गलती हो जाती है, इसका भी बड़ा ख्याल रखें। और एक आखिरी बात कि हमने देखा कि लोग जब मैयत का जनाजा पढ़ते हैं तो उस वक्त ऐलान करवाते हैं, और ये अगर लेन देन का मामला हो तो उनके बेटों से कर लो, और अगर किसी का कुछ दुख दिया हो, दिल दुखाया हो, तो प्लीज अल्लाह के लिए सब माफ कर दें। तो पहली बात तो ये बताएं कि जिनका इसने दिल दुखाया, क्या वो इसका जनाजा पढ़ने आए होंगे? और दूसरी बात कि अगर इसने रिश्तेदार औरतों का दिल दुखाया, तो औरतें तो वैसे ही जनाजा पढ़ने नहीं आती। तो मौत के बाद ऐलान करवाने का इतना फायदा नहीं, लुत्फ और मजा तो यह है कि जिंदगी में यह माफी मांगे। कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में लोगों से माफी मांग लेते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, सफेद रीछ हो गए थे, उनकी एक खूबसूरत आदत थी, वो जिस किसी से मिलते तो अलविदा होते हुए फरमाते, आपके तो मेरे ऊपर बहुत हुकूक हैं, मैं कमजोर हूं, अदा नहीं कर सका, आप मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें। शरीयत कहती है कि जब कहने वाले ने यह कहा और सुनने वाले ने आगे से मुस्कुरा दिया तो बस उसने गोया माफ कर दिया। वो हर किसी से माफी मांगते थे, बड़े से भी छोटे से भी, हर किसी से। तो मर्द भी इस आदत को अपनाएं, औरतें भी इस आदत को अपनाएं। बीवी खाविंद से माफी मांग ले, खाविंद बीवी से माफी मांग ले, बच्चे आपस में एक दूसरे से माफी मांग लें। ये माफी मांगने की आदत अच्छी आदत है, इसमें कोई शान घट नहीं रही होती कि बंदा कह दे जी मुझसे तो बहुत कोताहियां हुई और अगर आप हर्ट हुए प्लीज आप मुझे माफ कर दें। बल्कि बाज तो बच्चियों को ये ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो जिस किसी से बात करती हैं, बैठती हैं, हर एक से माफी मांग लेती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है कि दुनिया के मामलात को इंसान दुनिया में ही समेट जाए। कौन है जो आखिरत में जवाब देने के काबिल हो सके। तो आज वक्त है तैयारी करने का और इसको कहते हैं मौत की तैयारी, कि इंसान गुनाहों को छोड़े, नेकियों को अपनाए, जिंदगी शरीयत के मुताबिक बनाए, जितने दिल लोगों के हुकूक में कोताही की, गीबत की, दुख दिया, उन सब से माफी मांग ले। जिस बंदे ने ऐसा कर लिया और अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ कर लिया, इसने गोया अपनी मौत की तैयारी कर ली। अब जब मौत आएगी इसके लिए खुशियों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम मौत के लिए तैयार रहें। हमें नहीं मालूम कि हमें किस हाल में मौत आएगी। मैं अपनी बात को जरा समेटना चाह रहा हूं, उम्मीद है कि आप तवज्जो से बात सुनेगी। कि एक शख्स को दुश्मनों ने कत्ल किया और नहर में फेंक दिया और उसकी लाश पानी के अंदर कई दिन डूबी रही। जब वो ऊपर आई सतह पर तो इतनी फूल गई थी कि बंदे की पहचान मुमकिन ही नहीं थी, शक्ल ही बदल गई थी। पुलिस वालों को पता चला, उन्होंने आके लाश निकाली और जब देखा कि पहचान ही नहीं होती तो उन्होंने करीबी बस्ती वालों को बुलाया और कहा कि भाई इसको नहला दो, कफना दो, मुसलमान तो है। चुनाचे इमाम साहब ने कहा कि जी मैं नहला तो दूंगा, मेरे पास कफन के पैसे तो नहीं है, मुझे कफन के पैसे दे दो। एक बंदे ने कहा कि जी ऐलान कर दो, जरा सुने। मस्जिद में ऐलान हुआ, भाई लावारिस नाश है, कफन खरीदना है, चंदा लाओ। कोई रुपया लाया, कोई दो लाया, कोई पांच लाया। आधे घंटे तक ऐलान होता रहा कि लावारिस लाश है, कफन खरीदना है। आधे घंटे के बाद फिर जाकर पैसे पूरे हुए, कफन खरीदा गया, उसको नहलाया गया, कफना दिया गया, जनाजा पढ़ाया गया। जनाजा पढ़ते हुए एक आदमी की आंख में भी आंसू नहीं थे, इसलिए कि कोई जानता ही नहीं था ये कौन है। जब उसको दफन किया गया तो 3 महीने के बाद केस की हकीकत खुली, तब पता चला कि वह सरगोधा के इलाके का एक जिम्मेदार था। 4 मुरब्बे उसके बागात थे, करोड़ों की सालाना आमदनी थी, कोई 6 करोड़ रुपया उसके बैंक बैलेंस के तौर पे मौजूद था और उसके 4 जवान उम्र बेटे थे। उस लैंडलॉर्ड ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं करोड़ों पति बंधा जब दुनिया से जाने लगूंगा तो चंदे का कफन लेके जाऊंगा। इसको कहते हैं वारिस माण न करी वारसां दा रब बेवारसा कर मार दई। कि वारिस तुम अपने वारसों का मान न करना, अल्लाह बंदे को लावारिस करके मार देते हैं। हमें क्या पता कि साल में मौत आएगी, आज वक्त है उस मौत की तैयारी करने का। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐ दोस्त तुझे क्या मालूम कि बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका हो जिसे तेरा कफन बनना है। हम नहीं जानते कब हमारा कफन बाजार में आ जाएगा। लोग शादी और ब्याह में मशगूल होते हैं और उनको नहीं पता होता उनके कफन का कपड़ा पहुंच चुका होता है। इसलिए चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें, नेकी करें, झूठ की जिंदगी से बचें, सच की जिंदगी को इख्तियार करें, नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत को अपनाएं, ताकि मौत के लिए हम भी तैयार रहें। क्या मालूम कब जाना पड़ जाए। हमारा हाल तो वही है कि बारात पहुंच गई थी और लड़की वाले लड़की के कान सिलवाने गए हुए थे कि जी हमने कानों में बालियां डालनी हैं। जैसे उस लड़की वालों को शर्मिंदगी हुई, वही हाल हमारा है कि मलकुल मौत पहुंच जाएंगे और हमने अभी तैयारी ही नहीं की होगी। हमने कितनी बार आंखों से देखा जवानुल उमर बेटा चारपाई के ऊपर लेटा हुआ होता है, मां आगे बढ़ती है, बेटे तुझे क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। बेटा खामोश होता है, मां रोकर कहती है, बेटे तुम तो मेरी हर बात पे लब्बैक कहा करते थे, तुम मेरे इतने फर्मा बरदार बेटे थे, क्या हुआ। बेटा अपनी अम्मा से नहीं रूठा करते, नहीं खफा होते, बताओ तुम्हें क्या हुआ। बच्चा खामोश होता है, बिलाखिर बीवी आगे बढ़ती है, मेरे सरताज, मेरे हमराज, मुझे तो बताइए क्या हुआ। अगर आप मेरी किसी बात पे खफा हैं, मैं आपसे सॉरी कर लेती हूं, माफी मांग लेती हूं, मुझे बताएं क्या हुआ। नौजवान खामोश होता है, बहन आगे बढ़ती है, मेरे वीर मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। खामोश होता है, बहन कहती है कि मुझे बताएं, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूं, मगर जवान कोई जवाब नहीं देता। बेटी आगे बढ़ती है, अब्बू मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। अब्बू मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूं, कुछ खाना है या पीना है मुझे बताइए, कोई काम है मुझे बता दीजिए, अब्बू मुझे बताएं तो सही क्या हुआ। बाप खामोश होता है, बेटी रोती रह जाती है, मां फिर आगे बढ़ती है, बेटे मैंने कॉल कर दी है, अभी डॉक्टर को बुलवाऊंगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। बेटा खामोश होता है, इसी खामोशी की हालत में मां देखती है, आंखें खुली रह गईं, रू निकल गई, वो अपने कांपते हाथों के साथ जवान बेटे की आंखों को अंगूठे रख देती है। उस मां ने कभी सोचा भी ना था, मैं बुढ़ापे में जवान बेटे की आंखें बंद करूंगी। जब बच्चे की रूह निकल जाती है, सब रो रहे होते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, मैयत को फलां कपड़े में रख दो, थोड़ी देर पहले ये किसी का बाप था, ये नौजवान किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का खाविंद था, अब क्या हुआ, सब ने इसको मैयत मैयत कहना शुरू कर दिया। तो जवाब मिलेगा, असली इंसान तो चला गया, ये इसका जिस्म बाकी है, इसको भी हम इसके असली घर पहुंचाएंगे। चुनाचे उसको नहला दिया जाता है, कफना दिया जाता है और जनाजे का ऐलान कर दिया जाता है। उसको लेने के लिए कई रिश्तेदार कमरे के अंदर आ जाते हैं, भाई तुम क्यों आए हो, हम इसको इसके असली घर पहुंचाने के लिए, भाई ये घर भी तो इसी का था, इसी ने प्लाट खरीदा, इसी ने नक्शे बनवाए, इसी ने कमरा बनवाया, इसी ने ये मकान बनवाया, मार्बल लगवाया, कहां कहां से फर्नीचर ढूंढा, कहां कहां से बिजली की फिटिंग खरीद के लाया, अभी तो दीवारें भी मैली नहीं हुई, तुम इसको लेने आ गए हो। सब कहेंगे ये तो आरजी घर था, असली घर तो आगे है, दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। सब इसको कंधों पे उठा लेते हैं, रिश्तेदार जमा हैं, सब कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, फिर कब्र में उतारने का वक्त आता है। शरीयत का ये हुक्म है कि जो करीब तरीन रिश्तेदार हो वो कब्र में उतारे। हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखे, जवान बेटे को बाप कब्र में उतार रहा होता है, भाई को भाई कब्र में उतार रहा होता है। अल्लाह की शान, ये तो शरीयत की मेहरबानी है, उसने औरतों को मना कर दिया कि तुम जनाजे में और कब्रिस्तान में मत जाओ। अगर कभी औरतों को भी हुक्म होता कि तुम जाओ और अपने बेटे को दफन करके आओ, मुझे तो लगता है कितनी माएं होती जो जवान बेटे के साथ खुद भी दफन होना पसंद करती। कैसी अजीब अल्लाह ताला ने मर्दों को हिम्मत दी होती है, जवान बेटे को जिसके जिस्म पे कभी मैला कपड़ा भी बाप बर्दाश्त नहीं करता था, आज उसको जमीन पे लिटा देता है, अपने हाथों से मिट्टी डाल देता है। भाई मिट्टी डालते हैं, दोस्त मिट्टी डालते हैं, मनो मिट्टी के नीचे उसको दबा के अल्लाह के हवाले करके आ जाते हैं। जब अल्लाह के हवाले होना ही है, ऐ इंसान तू अपने आप को आज अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, जो आपका हुक्म होगा मैं उस पे चलूंगी, जो गुनाह होगा मैं उससे बचूंगी। आज हवाले करेंगे तो उसका फायदा होगा, चुनाचे इंसान को बिलाखिर अल्लाह के हुजूर जाना ही है। हजरत अजलान फरमाया करते थे, मौत की तकलीफ कैंचियों से कुतर देने से ज्यादा सख्त होती है, मौत की तकलीफ देग में भून देने से ज्यादा सख्त होती है। अगर मौत की तकलीफ का अंदाजा लगाना हो तो आप औरतों को तो बहुत आसानी से लग सकता है, कई मर्तबा आग पे खाना बनाते हुए आपकी उंगली जली होगी, कितने दिन उसकी तकलीफ रहती है। क्यों? कि जहां से उंगली जली वहां के गोश्त से रूह सिमट कर बाकी जिस्म के अंदर आ गई। अगर इतनी थोड़ी सी जगह से रूह सिमट गई, इतनी तकलीफ है, जब पूरे जिस्म से रूह समेट ली जाएगी उस वक्त तकलीफ क्या होगी, जरा उसको याद कर लीजिए। आज वक्त है हम उसकी तैयारी कर लें, फिर मौत के वक्त तकलीफ ऐसी नहीं होगी। चुनाचे हदीस पाक में आता है, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है, अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेजते हैं, जन्नत के फरिश्तों को भी भेजते हैं, वो जन्नत की खुशबुओं के रुमाल भी लेके आते हैं और उस बंदे के सीने पे खुशबुओं वाला रुमाल रख देते हैं। उस बंदे को जन्नत की खुशबू आती है, उसका दिमाग मुअत्तर हो जाता है और उसकी रूह को ऐसे कब्ज करते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। जब उसकी रूह को लेके चले जाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं, देखो ये मेरा नेक बंदा था, रूह को कब्ज कर लिया गया, अब जिधर से इसका जनाजा गुजरेगा तुम रास्ते के दोनों तरफ अदब से खड़े हो जाओ। सुभानअल्लाह, मोमिन की क्या शान है, जहां जहां से जनाजा गुजरता है फरिश्ते रास्ते के दोनों तरफ अदब से खड़े होते हैं। हदीस पाक में आता है, जिस जगह ये बैठकर नमाज पढ़ता था जमीन का वो टुकड़ा रो रहा होता है, जहां कुरान पढ़ा करता था जमीन का वो हिस्सा रो रहा होता है, आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जहां से इसके लिए रिस्क उतारा जाता था। सुभानअल्लाह, ये अल्लाह के आशिक की मौत है, इसलिए कहा गया कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ये आशिक का जनाजा जा रहा है, फिर इसको जब दफन किया जाता है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं, ये मेरा बंदा दुनिया से थका मांदा आया है, जाओ और इसको जाकर कह दो, नम कनौमतिल उरूस, दुल्हन की नींद सो जा। फरिश्ता आके खुशखबरी दे देता है, तुम दुल्हन की नींद सो जाओ। यहां मुहद्दिसीन ने नुक्ता लिखा ये क्यों ना कहा मीठी नींद सो जाओ, आराम की नींद सो जाओ, गहरी नींद सो जाओ, ये क्यों कहा कि दुल्हन की नींद सो जाओ। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि दुल्हन जब पहली रात अपने कमरे में जाकर सोती है उसको वही जगाता है जो उसका खाविंद उसका महबूब होता है। ये मोमिन आज कब्र में दुल्हन की नींद सो रहा है, कल क्यामत का दिन जब होगा इसको वही जगाएगा जो इसका महबूब हकीकी होगा। चुनाचे मोमिन कब्र से उठेगा, आवाज आएगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राजियतम मर्जिया फदखली फी इबादी वदखली जन्नती। मोमिन की आंख खुलेगी, अल्लाह ताला मुस्करा कर इसका इस्तकबाल करेंगे। ये कैसा खुशनसीब इंसान है कि जिसने अच्छी जिंदगी गुजारी, आज ये दुनिया से आखरत की तरफ कामयाब होकर चला गया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी कामयाबी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना ان الحمد لله رب العالمين www.tasqur'an.com